हम सभी भाई बहनों को, सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, सारी दुनिया में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा के इस अच्छे कलाम के लिए, इस अच्छे वचन के लिए जो उसने हम पर प्रकाशित किया, हम पर नाजिल किया, और जिससे कि हम खुदावन के पास वापस जाते हैं, उसके कलाम पर वापस जाते हैं और शुरुआत में वापस जाते हैं। मैं भजन संहिता जबूर से 119 जबूर से पढ़ूंगा और 116 आयत उसकी पढ़ूंगा। यहां वो कहता है, बहुत खुदावन का धन्यवाद हो, एक सौ सोलह आयत में लिखा है, कि तेरा वचन सच्चाई है, तेरा कलाम सच्चा है, और बहुत खुदा उनका धन्यवाद। और भाई फ्रैंक, अब भाई फ्रैंक, मैं भी आपको सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज सुबह। ये कितना सौभाग्य है हमारे लिए कि हम खुदावन के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर ईमान कर सकते हैं, उसकी इज्जत करते हैं अपने सच्चे मन से, और उस उद्धार की योजना और उस उद्धार के काम को हम देख सकते हैं जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया। और बहुत सारी ग्रीटिंग्स आई हैं भाई मिलो के द्वारा बाल्टिक सी से, और बहुत सारे भाई बहनों ने ग्रीटिंग भेजी, ब्रदर मैनुअल, ब्रदर लोटिका, और भाई लोटिका ने, और भाई और बहन एंडरसन ने न्यूजीलैंड से भेजी, बहुत सारे भाई बहनों ने भेजी, और बहुत सारे लोगों ने भेजी ये अभिनंदन। और भाई टाटी ने भी ग्रीटिंग्स भेजी, भाई जॉन ने ग्रीटिंग भेजी, और बहुत सारी, बड़ी लंबी लिस्ट है। हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए, धन्यवादी हैं। और अभी जो अमाल से, भजन संहिता से खुदावन का कलाम पढ़ा गया कि हमारे लिए बाइबल हमारे लिए सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये खुदा का सच्चा कलाम और पाक कलाम है, पवित्र वचन है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने वचन से मेल कराया, अपने अनुग्रह के द्वारा, रहम के द्वारा, फजल से द्वारा। और हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां पर के लोग बाहर से तो दिखाई देते हैं कि वो मसीह हैं, बाहर से तो जाहिर करते हैं कि वो क्रिसमस मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो गुड फ्राइडे मनाते हैं, वो ईस्टर मनाते हैं, और वो खुदावन का जो जी उठने का दिन और आसमान में उठाए जाने का दिन और पेंटिकुस का दिन भी मनाते हैं। पर इन दिनों में क्या हुआ इससे व्यक्तिगत रूप से उनका कोई संबंध नहीं है। हम सोचें, शख्सी तौर पे उनका कोई इससे कनेक्शन ही नहीं है। अब देखिए, संसार की जो जनसंख्या है, संसार में जितने लोग पाए जाते हैं, 2.2 बिलियन लोग इस संसार में पाए जाते हैं जो कि अपने आप को मसीह कहलाते हैं। अब उनमें से कितने थोड़े से हैं कितने थोड़े से हैं जो पूरे दिल से और पूरे मन से इस चीज पे ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और आज्ञाकारी और हुक्म मानने वाले बने, कितने इतने हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया कि उनका उनका बदलाव हो, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उसका अनुभव किया और नया नए सिरे से पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया है। और हम और हमको कितना दुख होता है इस बात से, ये देख के हम ये जानते हैं कि हम एक इस समय में आ गए हैं जो आखिरी का भी आखिरी वक्त है और हर दिन और रोज रोज खबरें आ रही हैं कि इस जमीन पर क्या हो रहा है, धरती पर क्या हो रहा है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो पहले था, कुछ भी ऐसा आज नहीं है, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, हर चीज बदल चुकी है, हर चीज फर्क हो गई है। अगर हम आज के जो नियम है उनके बारे में सोचें, कानूनों के बारे में सोचें जो कि मिलने जुलने के लिए जरूरी हैं और उन नियमों का पालन होना जरूरी है, तब हम देखते हैं कि देखिए कि देखिए समय जो है खात्मे पर आ गया, अब देखिए कितनी पेचीदगियां आ रही हैं और देखिए देश विदेश में अलग अलग मुल्कों में, अब देखिए अफगानिस्तान की ओर अगर हम देखते हैं कि देखिए कंट्री में, अपने देश में सारे लोगों का शासन ठीक से चले ऐसा करने के बजाय देखिए वहां तो कुछ उसका उल्टा ही हो रहा है। हजारों हजारों लोग जो हैं वो अपनी कंट्री को, अपने देश को छोड़ के, अपनी सरजमीन को छोड़कर, वतन को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जहां देखिए जहां वो पैदा हुए, जहां वो बड़े हुए, उसको छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए नई नई समस्याएं सेटलमेंट की आ जाएंगी जब वो नई जगह पे जाएंगे तो, पर हम इसके बारे में बात करने को इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जो क्या हो रहा है, हमने दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है। कि कोई इस बात का हिसाब नहीं लगा सकता कि क्या हो रहा है। हर चीज जो है वो बिखर चुकी है। और मेरे भाई और बहनों, ये तो बिल्कुल अंत का समय है जिसमें हम रह रहे हैं। देखिए हमारे प्रभु ने बिल्कुल साफ साफ इस बात को कह दिया था कि मत्ती 24 में उसने कह दिया था, जब उसको पूछा गया था, जब उसके चेलों ने उससे पूछा था ये सारी बातें कब होंगी, और तेरी वापसी का क्या चिन्ह होगा, क्या निशान होगा, और इस संसार का अंत कैसे होगा। भाइयों और बहनों, अगर हम खुदावन के पाक कलाम पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और अगर हम पर वो प्रकट होता है, जाहिर होता है, तो हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमारे खुदावन की जो वापसी है उसका उसका आना जो है बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब है। और हम प्रभु के बड़े आभारी हैं और धन्यवाद हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इन ब्रॉडकास्ट के लिए जो ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं कि सारा संसार, सारी दुनिया में सारे लोग, सारे जन, सारे अलग अलग जुबानों में और देशों में, और ये कहा गया है कि 30 से 40 लाख लोग जो हैं वो रेगुलरली निरंतर इस इन जो तीन बारी जो संदेश ट्रांसमिट होते हैं उसको सुनते हैं, और प्रभु प्रभु सुनने वालों में से लोगों को बुलाता है, बाहर निकालता है कि एक बार नहीं कि जो 350 संप्रदाय हैं, जो डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं, वो सारे के सारे नहीं बदलेंगे, सारे के सारे शिक्षा अपनी नहीं सुधारने को जा रहे हैं, शायद उनमें से एक भी ना बदलने की कोशिश करे। पर हम देखते हैं आज कि हम देखते हैं खुदावन के कलाम में, वचन में देखते हैं और देखते हैं और के पता करते हैं, क्योंकि इस गलती का शिकार कौन कौन हो गया है, जो गलत शिक्षाएं हैं, गलत तालीम है, और किसने किसको रासबाजी मिली और किसको फजल मिला खुदावन के सामने, खुदावन की हजूरी में किसने फजल और अनुग्रह पाया और कौन गिर गया, और जिसको खुदावन ने कौन है जिसको खुदावन ने अपना रास्ता और अपना अपना तरीका बताया, अपना कलाम समझाया, जो कलाम को समझ पाया, जो वाद विवाद नहीं करता, जैसे कि जैसे जैसे प्रभु ने कहा था कि हम सारे संसार में जाएं, जो उसकी बड़ी आज्ञा थी जाने से पहले कि हम जाएं और शिक्षा दें और इस उद्धार की योजना को, गॉस्पल को का प्रचार करें और बपतिस्मा दें, जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दें और प्रभु बड़ा साफ साफ तरीके से कहता है कि जो ईमान लाता है और जिसने बपतिस्मा लिया है वो निजात पाएगा, उसका उद्धार होगा। क्या आज इसको फिर से बताने की जरूरत है? नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जाहिर है। जो ईमान लाएगा, जो इस कलाम के ऊपर ईमान लाएगा, जो ईमान लाता है, जो खुदावन यीशु पर ईमान लाता है कि खुदावन यीशु मसीह ने जो कामिल, जो सारा काम हमारे लिए समाप्त किया है, जो अपने दिल से विश्वास करता है, ईमान रखता है कि खुदावन खुदा जो था प्रभु यीशु मसीह के में था और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना हमारा संबंध, हमारा रिश्ता खुदावन ने अपने साथ कामिल कर लिया, कायम कर लिया, और उसने अपना फजल दिया और उसने अपना प्रकाशन दिया, मुकाशवा दिया, और हमारा जो उद्धार करता है वो उसके बारे में हमें बता दिया। और कौन ऐसे कह सकता है, कौन इतनी अथॉरिटी से कह सकता है कि कोई बाप के पास नहीं आ सकता, मेरे सिवा, मेरे अलावा कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। और हमें इस बात पर ईमान रखना है खुदावन यीशु मसीह में कि जो खुदावन ने अपने कलाम में कह दिया, और हम साधारण रूप से जानते हैं कि खुदावन में जो ईमान रखना बहुत जरूरी है, जो कि उसने वादे किए हैं, जब जो कुछ उसने अपने कलाम में कहा, हम हर एक विषय के ऊपर बात करते हैं, हम इतने सालों के अंदर हमने सब बातों के ऊपर ध्यान दिया, सब बातों को सीखा समझा, कि जो कि सिखाने का काम, बताने का काम, प्रचार करने का काम और भविष्यवाणियों से संबंधित सारी बातें, सारी मिनिस्ट्री, सारी सेविकाएं, सारी खिदमतें जो खुदावन ने कामिल करी, जो कायम करी उसने अपनी कलीसिया में, और उसका ध्यान रखता है, उनको चलाता है, और जो अमाल की किताब है, प्रेरितों के काम है, जिससे कि जो अमाल की किताब है, प्रेरितों के काम है, वो लिखा जा सके, उस नींव को, जो नए नियम की जो कलीसिया है, नए अदनामे की जो कलीसिया है, उसकी जो नींव डाली गई उसके बारे में पूरा। और फिर पतरस कहता है और यहुन्ना और याकूब और यहूदा, और हम जानते हैं कि ये कौन कौन थे, और याकूब और मेरे भाई और बहनों, आज भी हम सबसे पहले देखेंगे, उस बात को देखेंगे कि खुदावन ने क्या किया, खुदावन ने उनके साथ क्या किया, जो विश्वास करते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो उसका जो उसके धरोहर हैं, जो उसके कहलाते हैं, जो नए नियम जो नए सिरे से पैदा हुए हैं और जो आत्मा और कलाम से पैदा हुए हैं, तब खुदावन यीशु जो है, तब उसने इंसानों इंसानों के और बेटे और बेटियों को खुदावन के बेटे और बेटियों में तब्दील कर दिया, जिससे कि खुदावन यीशु मसीह तो पहलौटा है, इकलौता है, वो सबसे पहला है, वो हमारी जो बुलाहट है उसमें सबसे पहला है। अब हम कुछ कलाम वचन से पढ़ेंगे। हम यहूदा की पत्रीख और उसका तीसरा बाब, जूड यानी यहूदा बा, तीसरा तीसरा बाब यहूदा देखिए, यहूदा में तीसरी आयत में क्या लिखा है। ये सभी लोगों के लिए कहा गया है। हे प्रियो, मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से कह रहा था। हम सब सहभागी हैं। मैंने तुमसे समझाना जरूरी जाना कि पूरी यत्न करो, पूरी मेहनत करो कि क्योंकि इतने हैं। अब देखिए, खुदावंद ये कह रहा है, यूहन्ना 17 के हिसाब से उन्होंने इस चीज का अनुभव किया, इस चीज को जाना कि हमारे खुदावंद ने अपनी दुआ में कहा कि उनको पवित्र कर, उनको रासबास कर, उनको पाक कर, सच्चाई से पाक कर, सच्चाई से उनको पाक कर, सिद्ध कर, क्योंकि तेरा जो वचन है, तेरा जो कलाम है, वही सच्चाई है। अब देखिए, ये जो वचन, जो कलाम हमको सौंपा गया, जो जो हमको दिया गया एक बार के लिए, एक ही बार के लिए दिया, ये नहीं कि हमको ये वचन कलाम दिया गया, बाद में इसमें तब्दीली हो जाएगी या वापस ले लिया जाएगा, नहीं, ये एक बार के लिए कामिल तौर पे फाइनल रूप में हमको दे दिया गया और हमको ये कलाम दे दिया गया, जो उद्धार पाए लोग हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, जिनको फजल मिला, अनुग्रह मिला खुदावन के सामने, और जिन्होंने ईमान और हुक्म मानना यानी आज्ञा और विश्वास दोनों से चले वो, और जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया और एक बार में बपतिस्मा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद इस प्रॉमिस को हमने लिया, इस वादे को हमने जाना कि ये भी खुदावंद जो है वो आग का बपतिस्मा और वचन का बपतिस्मा हमको देता है। और देखिए, जिन्होंने अपने उद्धार को जाना, अपने उद्धार को अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगियों के अंदर, कि खुदावन ने हमें क्या दिया, खुदावन ने अपने फजल से हमको क्या दिया, उसके लिए यत्न करते रहें, उसके लिए कोशिश करते रहें, उसके लिए परिश्रम करते रहें, जो कि उसने अपने संतों को, अपने चुने हुए लोगों को दिया। और इसको बार बार कहने की जरूरत है इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा। हम किसी ग्रुप या संप्रदाय या किसी बाहर की शिक्षा को रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके उसके उत्तरदायी नहीं है, उसके एजेंट नहीं है, पर हम उस सच्चे और जिंदा ईमान के बारे में बोलते हैं जो कि सच्चे और जिंदा खुदावंद के बारे में है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा के जरिए से हमको के बारे में हमको मिला, और हमको उस कलाम की तरफ, उस शुरुआत की तरफ हमको वापस जाना है, और सिर्फ उस बात पे यकीन रखना है, सिर्फ उस बात पे ईमान रखना है जैसा कि कलाम कहता है, और इस बात का अनुभव भी करें कि कलाम क्या कहता है। हम पढ़ें यहां पर, और हम दूसरा तिमोथी 4:7-8, दूसरा तिमोथी 4:7-8। मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है वो मुझे देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अभी हमने दूसरा तिमोथियस 4:7-8 को पढ़ा। आमीन। ये जो कलाम है, ये जो पौलुस ने तिमोथियस को खत में लिखा, ये देखिए, ये जो खत है, ये जो अभी हमने पढ़ा, जो अभी हमने यहूदा में भी पढ़ा था 3 आयत में, उसने अपना काम पूरा किया, उसने अपनी दौड़ को पूरा किया, और उसने ईमान को कायम रखा, और आखिरी वक्त तक, आखिरी समय तक वो ईमानदार रहा और फेथफुल रहा, और एक बार भी उसने वहां से विचलित नहीं हुआ, उसने अपनी राह नहीं बदली, पर उसने अपने उस वचन को थामे रहा जो एक बार रासबाजों को, धर्मियों को दिया गया, जब तक कि अंत ना आ जाए, अपने जीवनों के अंत तक, दौड़ के अंत तक उसको थामे रहा, पकड़े रहा, और इसलिए वो कह सकता था, और इसलिए वो कह सकता था लाजमी तौर कि अब मेरे लिए वो मुकुट रखा गया है, धर्म का मुकुट रखा गया है, धार्मिकता का मुकुट रखा गया है, और जिन्होंने भी उस ईमान को कायम रखा, थामे रखा है, उन सब को वो धार्मिकता का, रासबाजी का वो ताज और वो मुकुट मिलेगा। और पौलुस कहता है, उसने बड़े साफ तौर पर इस बात को बयान किया कि जो जो कि धर्मी है और न्यायी है, वो प्रभु जो है, जो धर्मी और न्यायी है, वो मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को देगा जो कि ईमानदार रहते हैं और रासबार रहते हैं, मुझे भी और आपको भी देगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे ऊपर ये लागू होता है। आज खुदावन हमसे इस कलाम से इस वचन से खुदावन हमसे बात कर रहा है, ये समझिए। अब हम और कुछ आयतें पढ़ेंगे जिससे कि हमारे दिलों को वो बात छू जाएगी, और मैं आपसे कह रहा हूं, हर इंसान खास तौर पे पर्सनली उन आयतों को अपने मनों में जाने, गहन ग्रहण करे, रिसीव करे। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों 1:3 पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। देखिए, इसको इकरार करें, इसका इकरार करें, इस बात को कहें, हाय खुदावन, हाय वफादार खुदावन प्रभु, तूने सारे श्राप को हमसे छीन लिया, हमारा श्राप हटा दिया, तूने मेरे पापों को धो दिया, हटा लिया, और तूने सारी बुराइयों को हटा दिया, और तूने उन सब को साफ कर दिया, और तूने उसका प्रायश्चित कर दिया, और तूने मुझे शांति दे दी, और तूने अनुग्रह के द्वारा, फजल के द्वारा मुझे शांति और इत्मीनान दिया। अब देखिए ये जितनी बातें हैं, ये देखिए सारी स्वर्गीय स्थानों में, आसमानी मुकामों में हमारे लिए ये आशीषें हैं। और देखिए उसने आसमानी मुकामों में मुझे और आपको, अपनी कलीसिया को बरकतें दी, और खुदावन चाहता है कि इन सारी बातों को जो शुरू की कलीसिया में थी, उस इस आखिरियत के वक्त में वो हमें उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, उस हालत में लेकर आ जाए जैसे कि वो शुरू में थी। और उसने अपनी इच्छा और भली भली मनसा से हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि हम पहले से ही हम उसके सामने पवित्र हों और निर्दोष हों। हम खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं इस बात के लिए। हमारे लिए खुदावन की कुव्वत और उसके सामर्थ के बगैर कुछ नहीं हुआ, पर हम उसकी कुव्वत, उसकी सहायता और उसकी सामर्थ और पावर के द्वारा, जो उस प्रकार की जिंदगी, जो रासबाजी की जिंदगी है, उसमें हम चल सकते हैं, हम उसकी पैरवी कर सकते हैं, जो हम उन सब बातों की पैरवी कर सकते हैं जैसा वो चाहता है, जिनसे वो खुश होता है। कि हम खुदावन के भय में और उसकी इज्जत में रहें। अब पांचवी आयत पढ़ रहे हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के द्वारा हमें अपने लिए पहले से ही ठहरा दिया कि यीशु मसीह के नाम, कि यीशु मसीह के द्वारा, कि यीशु मसीह के जरिए से हम उसके लेपालक बेटे और बेटियां हो जाएं। खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें पहले से ही चुन लिया और ठहरा दिया अपनी औलाद और अपने बच्चे बना करके, प्रभु यीशु मसीह में अपनी मंशा के द्वारा, अपने भले अभिप्राय के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन का बेटा है, और उसके ऊपर ये आवाज आई आसमान से, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जिसमें मैं निहायत खुश हूं। जो खुदावन का बेटा होता है, जब हम खुदावन के बेटे होते हैं, जब हम उस लेपालकपन और उस पहले से ठहराए जाने, पहले से चुने जाने से कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए, और हमारा लेपालन हो चुका, हमारा एडॉप्शन हो चुका, और जिस तरीके से खुदावन यीशु मसीह जो खुदावन का बेटा था, जो खुदा का बेटा था, वो जो खुदावन का बेटे, उसी तरीके से हम भी खुदावन के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और कितनी बड़ी, कितनी फजल की और कितनी बरकत की बात है। कौन कह सकता था कि मैं अपने खुदावन की तरफ जा रहा हूं और तुम्हारे खुदावन के पास जा रहा हूं, और अपने खुदावन के पास जा रहा हूं, और तुम्हारे खुदा के पास और अपने खुदा के पास जा रहा हूं। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कहा, और उसके नाम की महिमा और जलाल हो। अब देखिए वो आज जो भी हमारे लिए कर रहा है, उसका कितना शुक्रगुजारी हम करते हैं, कितना धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें, और छठी आयत, क्योंकि उस अनुग्रह यानी कि फजल की महिमा की स्तुति हो कि उसने हमें प्रेम में, सेत में, उसने हमें लहू से छुटकारा दिया और अपराधों की क्षमा दी उस अनुग्रह के धन के अनुसार जिसे उसने उसने हमें अपना फजल दे दिया। खुदावंद का शुक्र हो। ये नहीं कि हमको मिलेगा, नहीं, उसने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है, ये हो गया, ये हमने अनुभव कर लिया है। हम जानते हैं अपने सारे मनों से कि हमारे लिए क्या किया गया, हमारे लिए क्या खुदावन ने किया। खुदावन खुदा जो था वो बेटे में था, खुदावन यीशु में से था, यीशु मसीह में था, और उसके द्वारा सा उसका संबंध, उसका रिश्ता, नाता हमारे साथ जुड़ गया और उद्धार का काम हो गया। वो जो खुदावन का जो मेमना था, उसका जो लहू था, उसके लहू से हमारे उद्धार का काम, नजात का काम हो गया। और क्योंकि जिंदगी जो जान होती है, जिंदगी जो होती है, लेव्यवस्था 17:11 में लिखा है कि जान जो है, जो जीवन है, वो लहू में होता है। और क्योंकि ये और उस पाक लहू में, खुदावन के लहू में जो जान थी, वो जीवन हमको मिल गया। और उसने उस खून को बहा करके वो जीवन हमको दे दिया। वो जो के बचाए हुए लोग, उद्धार किए हुए लोग, नजात पाए लोग हैं, उनके ऊपर ये वाला लहू लग जाए और उनके ऊपर वो हमेशा की जिंदगी उनके ऊपर नाजिल हो जाए, हमेशा की जिंदगी उनको मिल जाए। और उसके फजल से, उसके अनुग्रह के द्वारा हमने अनंत जीवन को हमने पा लिया है और हासिल कर लिया है, और ये हमको दिया गया। देखिए 8वीं आयत पढ़ रहे हैं हम, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से कर दिया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद भले अभिप्राय के द्वारा हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने पर ऐसा इंतजाम हो, ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, सब कुछ उस यीशु मसीह में मिल जाए, एकत्र हो जाए, जुट जाए। देखिए इसके बारे में सोचें भाई और बहनों, हम अपने वक्त में हम देखिए हमारी जो बुनियाद है वो मुकाशफा प्रकाशन पर है, रेवलेशन पर है कि हम खुदावन ने इस वक्त में, इस जमाना में, इस वक्त में, इस समय में, जैसा कि उसने वादा किया था, उसने जैसे पुराने और नए नियम में उसने वादा किया था, वैसा उसने नबी को हमारे लिए भेज दिया कि हमारे लिए हर चीज नई कर दे। और सारा जो उद्धार की योजना है, नजात का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसको कामिल कर सके। और जिसको के मुकाशफा के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा हमको दिया गया, हमको मुकाशफा मिला। हम कौन हैं? हम तो इस संसार में जो भरमाने वाली चीजें हैं, जो कंफ्यूज करने वाली शिक्षाएं, हम उनके बीच में रहते हैं। आप देखिए रोमियो में हम देखते हैं कि क्या होगा, और इस इतने गलत समय के अंदर, जिस वक्त में जिस हम रह रहे हैं, और इस वक्त में भी, इसने बुरे वक्त में भी उसके लोग पाए जाते हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जो खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बड़े अलौकिक तरीके से, बड़े गैर मामूली तरीके से खुदावन के साथ जुड़े हैं और खुदावन की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, खुदावन की तरफ से जोड़े गए हैं, खुदावन की तरफ से बुलाए गए हैं। जैसे कि पुराने नियम की नबूवत में नबियों ने कहा, और जैसे नबियों ने नए नियम में, नए अधनामे में भी कहा, ऐसा खुदावन कहता है। इस तरीके से खुदावन ने भाई विलियम ब्रैनम को उसने बुलाया और उसने उसको आज्ञा दी कि जिस तरीके से पौलुस को खुदावन मिल गया, और उस ब्राइट लाइट में जब वो डमस्कस को जा रहा था, उसी तरीके से वही खुदावन हमको, वही खुदावन वही खुदावंद वैसे ही लाइट में, वैसे ही प्रकाश में, रोशनी में भाई ब्रैनम को दिखाई दिया, और भाई ब्रैनम को उसने बुलाया, और उसने उसको बुलाया, और वो खिदमत दी, उस आज्ञा को दिया, उस सेविकाई को दिया, उस खिदमत के लिए उसको बुलाया कि वो आखिरी आखिरी मैसेज, वो आखिरी कलाम हमको मिल सके जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। और हम खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार के उसके बड़े शुक्रगुजार हैं और धन्यवादी हैं कि उसने हमको इस तरीके से हमारा हमारा हमारी अगुवाई करी कि हमको उन सारी बातों को उसने समझा दिया जो खुदावंद ने इस वक्त के लिए हमारे लिए मुकर्रर किया। वो सारी बातें, वो सारा कलाम खुदावंद ने हमको समझाया। हम सिर्फ 4000 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में नहीं बोलते जो 2000 साल पहले हुआ, सिर्फ हम उसका बखान नहीं करते, और हम सिर्फ उन बातों के बारे में नहीं बोलते कि जब से सुधार का काम शुरू हुआ, बल्कि हम इस बात को कहते हैं कि इस बात को हम कह सकते हैं कि आज का जमाने में, आज के वक्त में, आज खुदावंद क्या कर रहा है, खुदावंद ने हमारे वक्त में क्या किया, हमारे जमाने में खुदावंद ने क्या किया और क्या कर रहा है। अब देखिए वो जो वादे थे, ये जो जो एलिया ने जो 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 वादा किया था, जिसको खुदावंद ने इस्तेमाल किया था एक बड़े खास तरीके से खुदावंद ने एलिया को इस्तेमाल किया कि उसने इज़राइल के लोगों को बुलाया, वापस बुलाया, उनको इकट्ठा किया जो के पीछे हट गए थे, जो जो गिर गए थे अपने ईमान में, उनको दोबारा दोबारा बुलाया, उनको दोबारा इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा किया, और कर्मल के पहाड़ पर, माउंट कार्मल पर उनको इकट्ठा किया, और उसने अपनी उस सेविकाई को, उस आज्ञा को जो खुदावन जिसके लिए खुदावन ने उसको बुलाया, जिससे उस वेदी को, उस ऑल्टर को वो दोबारा से कामिल करे, और उन 12 पत्थरों को दोबारा से जोड़े, और 12 जो कबीले थे इज़राइल के उनको जोड़े, उनको एक साथ मिलाए, और उस वेदी को कायम करे दोबारा से, और जो बाकी थे, और उन्होंने तो अपने अपने परमेश्वरों को, अपने अपने देवी देवताओं को बुलाया, पर कोई सामने नहीं आया, कोई उनकी मदद नहीं करने आया। तब एलिया सामने आया, और एलिया ने आकर के पुकारा, और उसने प्रार्थना करी, खुदावंद को पुकारा, और तब खुदावंद ने उसकी आगे उसकी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया, और उसको कामिल किया, और उन सारी चीजों को पूरा किया, और वो लकड़ी और जो वहां पर वेदी पर रखी गई थी, और वहां लिखा है कि खुदावंद खुदा ने खुद ऐसा होने दिया कि तब उसने उन लोगों को बदल दिया, उसने उनकी बहाली कर दी कि वो खुदावंद की तरफ वापस आ गए, और उस सच्चाई के ईमान में वापस कामिल हो गए। आज भी वो हो रहा है, आज भी वो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा वो हो रहा है, और वो जो वो आत्मिक वेदी है, वो जो शिक्षा है, और जो 12 प्रेरितों की, 12 रसूलों की जो शिक्षाएं हैं, वो दोबारा से दोबारा वो शिक्षा, वो तालीम बहाल करी जा रही है, और मेमना जो है, जो खुदावंद का मेमना जो है, उसके बारे में बताया गया, सिखाया गया, बताया गया, और जिसने कि हम सब के ऊपर आशीष दी, और जिसने हम सबको हमको अटोन किया, और खुदावन का मुकाशवा हमको मिल पाया कि हम उन बातों को समझ पाए। ये वो दिन है जो खुदावन ने हमारे लिए बनाया है, ये वो दिन है जो खुदावन ने हमारे लिए बनाया, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके पहले से ठहराए हुए और पहले से चुने हुए लोग हैं, उनके लिए आज का जो दिन है, हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं, और हमारा हिस्सा जो है उस बात में है, आज हमारा हिस्सा उस बात में, हम उसके भागीदार हैं जो खुदावंद आज कर रहा है। उस सिर्फ खुदावंद यह कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। इसलिए जितने नबी थे जो खुदावंद से बुलाए गए थे, और जितने रसूल थे, प्रेरित थे, जो खुदावंद से के बुलाए हुए थे, और भाई ब्रैनम भी, और उन्होंने भी डायरेक्ट तरीके से इस बुलाहट को सुना और इस सेवकाई को प्राप्त किया। मैं आपको कहूं, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि भाई फ्रैंक, ना सिर्फ उन सन 1949 से इस बात को मैंने अनुभव किया पर्सनली, बल्कि और बड़ी अलौकिक और गैर मामूली चीजें मेरे साथ हुई, और उसके बाद मेरी भी डायरेक्ट सेविकाई 2 अप्रैल और 1962 में 2 अप्रैल को खुदावन ने मुझे डायरेक्ट तरीके से बुलाया, सेविकाई में अपनी खिदमत में बुलाया। ये मेरे लिए एक आसान बात नहीं है कि इन बातों के बारे में मैं बात को इन गैर मामूली यानी आत्मिक बातों के बारे में आपको बताऊं, ये मेरे लिए आसान नहीं है। पर फिर भी आप देखिए, ये वो खास बातें हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत अहम हैं और बहुत आवश्यक हैं। मैं हर एक को उस दिन और उस समय पर ले जा सकता हूं, उस मौके को दिखा सकता हूं जहां प्रभु ने मुझसे बातचीत करी, प्रभु ने मुझसे मुलाकात करी, मैं दिखा सकता हूं। और प्रभु ने जिस तरीके से जो खास कान में सुनाई देने वाली आवाज थी, उस आवाज सुनी हुई आवाज में उसने मुझसे बात करी, और मैं खुदावन का बड़ा आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि मेरी जो सेविकाई है, वो जो सेविकाई है मेरी, वो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री से निरंतर जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, उससे अलायदा नहीं है, उसी मिनिस्ट्री से मेरी सेविकाई जुड़ी हुई है। मैं कह सकता हूं, जैसा कि प्रभु ने कहा, निश्चय कह सकता हूं, उसने मुझसे कहा, जैसे उसने 2 अप्रैल को 1962 को मुझसे कहा, प्रभु ने और भी बातें उसने कही, उसमें ये बात भी कही, मेरे सेवक इस भोजन को इकट्ठा कर, इस भोजन को भंडार में रख, क्योंकि एक अकाल आने वाला है, एक भयंकर अकाल आने वाला है, और उस समय में तब तू खड़ा होकर के, लोगों के बीच में खड़ा होकर के भंडार में से इस भोजन को, इस खुराक को तू बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और देखिए, 40 की 40 जो दृष्टांत थे, जो पैरेबल्स थे, वो हम जानते हैं उनके बारे में, तमसील जो 30-40 हम जानते हैं, और भाई ब्रैनम ने भी बताया। उन्होंने 1 अप्रैल 1962 को बोला था, तो उनको ये सेविकाई मिली थी, खिदमत मिली, और उनको ये कहा गया था 1 अप्रैल 1962 को कि स्विट्जरलैंड मत जाना और जेफरसन विल वापस जाना। भाई ब्रैनम को कहा गया था कि जा करके भंडार में इस खुराक को रखो, और तब भाई विलियम ब्रैनम को यह कहा गया था, तब उन्होंने कहा तब और 3 दिसंबर 1962 को भाई ब्रैनम ने मुझसे दो गवाहों के सामने, भाई सॉथमैन और एक और भाई के सामने मुझसे कहा था कि ये जो खुराक है, ये जो भंडार में जो खाना है, ये जो स्टोर किया गया है, जो एकत्रित किया गया है, ये है खुदावन का कलाम, ये इस वक्त के लिए खुदावन का वचन है, ये जो भंडार में जो भोजन है, ये वो आखिरी मैसेज है, ये वो आखिरी खुराक है जो खुदावन ने हमारे लिए भेजी है। और ये टेप में ये बातें बोली गई हैं, बताई गई हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हें सारा बाकी की खुराक, बाकी का भोजन, बाकी की शिक्षा ना मिल जाए जो इससे जुड़ती है, तब तक इंतजार करो। मैं कहानियां नहीं बोल रहा, मैं किससे नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मुझे कहा गया था। हम जानते हैं खुदा जो नबूवत की जो खिदमत थी, जो भविष्यद्वक्ता की जो सेविकाई थी, हम जानते हैं कि प्रभु ने उनको किस प्रकार से बुलाया। और देखिए, 33 साल तक 33 ईयर्स तक खुदावन ने इस गिफ्ट को और इस बुलाहट को और इस आज्ञा को और इस सेविकाई को कंफर्म किया जो कि उसने भाई ब्रनम को दी। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जिसमें जो हर बात जो उन्होंने कही थी, जो उन्होंने प्रचार करनी थी, जो उन्होंने बताई, सिखाई, जो उन्होंने बताई, वो सारी चीजें एक समय खात्मे पर आई। तब उसके बाद खुदावन ने, तब जब उन्होंने अपनी सारी सेवकाई को कामिल कर लिया, खत्म कर लिया, पूरा कर लिया, तो खुदावन ने अपने बंदे को अपने पास बुला लिया। और देखिए, ये उस दिन हुआ जिस दिन की मेरा जन्मदिन था, जिस दिन मेरा बर्थ था, जो मेरा समय था पैदा होने का, उसी दिन ये काम, उसी दिन ऐसा हुआ कि भाई ब्रनम को खुदावन ने भाई ब्रनम को अपने पास बुलाया। और मैंने देखा और उनको मैंने एक अलौकिक बादल में ऊपर जाते हुए देखा जब वो ऊपर उठाए गए। और 24 दिसंबर 1965 को आधी रात होने से पहले जब मुझे ये मुकाशफा प्रकाशन मिला, पर मैं तो भाई ब्रनम को ये कह रहा था, आप तो इब्ने आदम नहीं है, आप तो मनुष्य के पुत्र नहीं है, मैं क्यों देख रहा हूं कि आप बादलों में उठाए जा रहे हैं। खुदावंत खुदा जो है वो हर चीज की निगरानी रखता है, वो हर चीज का ध्यान रखता है, हर चीज अपने हिसाब से करता है। और जब से वो खुदावन में सो गए, तब से वही कलाम जो भंडारे में रखा गया था, वो जो वचन था, वो जो खुराक थी, हम उस खुराक को, उस वचन को, उस शिक्षा को, हम उस वचन को सारी संसार में ले जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो खुदावन ने किया हमारे वक्त में, हमारे समय में किया। और उसी तरीके से, और जो 11 जून 1963 को ये बात भाई ब्रनम को कही गई कि जैसे के यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया खुदावन की पहली आमद के लिए, उसी तरीके से तुमको वो संदेश, तुमको वो कलाम, तुमको वो मैसेज दिया गया है। ये जो मैसेज तुमको दिया गया, ये खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी करेगा। और बहुत सारे साल आए और चले गए, 1965 के बाद बहुत साल आए और बहुत साल चले गए, पर खुदावन का कलाम जो है वो इन दिनों में, इन सालों में, इस अरसे में खुदावन का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। और जो सेवा करने वाले भाई हैं वो भी यही वाली खुराक, यही आत्मिक खुराक जो है, कई बहुत सारे सेविकाई करने वाले भाई जो हैं वो इसको बांट रहे हैं। एक भाई ने, उन भाई ने मुझे कहा अपनी ईमेल, उन्होंने कहा अपनी ईमेल में कि मैं किसी और भाइयों की मीटिंग में नहीं जाता जिसमें भाई फ्रैंक को निमंत्रण न्योता नहीं मिलता। और देखिए, उन्होंने इस चीज को थामे हैं इस चीज को, उन्होंने परख लिया, इस चीज को जान लिया। और उन्होंने कहा कि उसने, खुदावन ने बहुत लोगों को नहीं बुलाया और वो हमेशा एक को बुलाता है, वो बहुतों को बहुत सारी गिनतियों में नहीं बुलाता, एक वक्त में खुदावन एक को बुलाता है। क्या आपने किसी से ये सुना जो ये कह सकता है कि मैंने इस दिन, इस वक्त, इस जगह पर, इस शहर में और इस घड़ी मैंने खुदावंद की चुभने वाली उस आवाज को मैंने सुना, अपने कानों से सुना, और ये उसने मुझसे कहा। क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कोई कह सकता है? ऐसा कोई इंसान आज आप इस जमीन पर नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसा और कोई ایسا کوئی انسان ہے نہیں. خداوند نے ہر چیز کا انتظام کیا. خداوند نے پوری حلیمی میں کہہ رہا ہوں کہ خداوند نے ہر چیز کا انتظام کیا, ہر چیز کو خداوند نے ڈیسائیڈ کیا, نیوکت کیا, جو کہ اس کے ادھار کے, اس کے نجات کا جو پروگرام ہے اس میں خداوند نے اس کو کامل کیا. بھائی اور بہنوں, اگر میں آپ کو بتاؤں ایک اس انوبھو کے بارے میں جو میرے ساتھ ہوا اور جو ابھی ایک ہفتہ پہلے میرے ساتھ ہوا, میں یہ بتا رہا ہوں. ایک کچھ بھائی لوگ بیلجیم سے آئے اور وہ مجھے ملنے کے لیے آئے, اور جو کہا تھا, جو ان میں سے جو بولنے والا تھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا, بھائی فرینک میرے کو یہ اچھا ہے کہ مجھے پولوس سے ملنے کی بڑی اچھا ہے. اور انہوں نے کہا, اور اس نے کہا بھائی فرینک, اور اس نے بولا جو میری جو اچھا ہے, میری جو زبردست اچھا ہے, میں پولوس کو گریٹ کرنا چاہ رہا تھا, اس کا ابھینندن کرنا چاہ رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا, مجھے آنا پڑا اور مجھے آ کر آپ کا ابھینندن کرنا پڑا. میں نے کہا, انہوں نے کہا جو آپ میرے کو گریٹ کر رہے ہیں اس کا پولوس سے کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اس نے کہا پربھو, انہوں نے کہا جیسے پولوس کو خداوند نے پولوس کو بلایا اور اس کو بھیجا, اور اسی پرکار سے خداوند نے آپ کو بھی یہ سیوکائی دی, اور آپ کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی خداوند آپ کے کلام کو لے جا کر کے سارے سنسار میں پرچار کریں. بہت ساری گواہیاں یہاں پر دی جا سکتی ہیں. اور میں پھر چاہتا ہوں کہ رومیو کے خط سے پڑھا جائے کہ وہاں کیسا لکھا ہے کہ اس دنیا میں کیسا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اگر آپ اس بات کو برداشت کر پائیں, ہم دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں رومیو, جس سے کہ آپ اور آبھاری ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خداوند اس زمانہ میں ہمارے ساتھ, خداوند ہمارے کو کیسا رحم اور کیسا فضل ملا. ہم رومیو 1:20-25 آیت, 25 سے 32 آیت, رومیو 1:25-32. کیونکہ انہوں نے پرمیشور کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور سرشتی کی اپاسنا اور سیوا کری, نہ کہ اس سرجنہار کی جو سدا دھنیہ ہے, آمین. اس لیے پرمیشور نے انہیں نیچ کامناؤں کے وش میں چھوڑ دیا, اور جہاں ان کی استریاں نے بھی سوبھاوک ویوہار کو اس کے سوبھاؤ کے ورودھ ہے بدل ڈالا, ویسے ہی پرش بھی استریوں کے ساتھ سوبھاوک ویوہار چھوڑ کر آپس میں کاماتر ہو کر جلنے لگے, اور پرشوں نے پرشوں کے ساتھ نرلج کام کر کے اپنے بھرم کا پھل پایا. رومیو 1:25-27 تک ہم نے پڑھا. جب انہوں نے پرمیشور کی کو پہچانا نہ, تو پرمیشور نے انہیں نکمے من پر چھوڑ دیا کہ وہ انوچت کام کریں. اسی لیے وہ سب پرکار کے ادھرم اور دشٹتا اور لوب اور بیر بھاؤ سے بھر گئے, اور ڈا اور ہتیا اور جھگڑے اور چھل اور ایرشیار سے بھرپور ہو گئے, اور چگل خور اور بدنام کرنے والے, پرمیشور سے گھرنا کرنے والے, دوسروں کا انادر کرنے والے, ابھیمانی, ڈینگ مارنے والے, بری بری باتوں کے بنانے والے, ماتا پتا کی آگیا نہ ماننے والے, نربدھی, وشواس گھاتی, مریادہ رہت اور نردئی ہو گئے. वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से खुश भी होते हैं। देखिए इतना ही काफी है। देखिए आपने सुन लिया पढ़ लिया, देखिए ये काफी है जो सुना गया और पढ़ा गया कि देखिए यहां देखिए इस बात का कंपैरिजन देखिए, इसकी तुलना देखिए कि देखिए जो बचाए हुए लोग हैं जो उद्धार पाए लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो उनका 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 उनके साथ जो तौर तरीका है जो खुदावंद का नियुक्त किया तौर तरीका वो चल रहा है जैसे खुदावंद ने कहा कि कहा कि अपने माँ बाप को छोड़कर एक आदमी जो है वो अपनी बीबी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन और एक शरीर हो जाएंगे। और ये खुदावंद का दिया हुआ कायदा है, ये खुदावंद का दिया हुआ निजाम है, ये उसकी दी हुई आज्ञा है कि कलीसिया ऐसे चलनी चाहती है। और उस और देखिए बाकी चीजें जो हैं वो कोई खुदावन को नहीं सुनते, खुदावन की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी बातों पर हुक्म नहीं, उसके हुक्मों को नहीं, उन्होंने अपने 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 डिसीजन अपने निश्चय उन्होंने अपने आप ही कर लिए। अब देखिए अगर हम इन बातों को उसकी तुलना देखें, इन बातों को समझें, इनको इनको आपस में एक दूसरे से मिलाएं तो देखिए क्या होता है। देखिए अभी जो पढ़ा गया खुदावन ने शादी यानी विवाह को उसकी नियुक्ति करी, उसने नेचुरल में उसने बताया कि एक फैमिली परिवार होना चाहिए, वाइफ और हस्बैंड होने चाहिए। उसने उसने हर एक को अपनी अपनी जगह दी है, अपनी जगह पर रखा। और भाई और बहनों इस बात को समझें, हम जिन्होंने हमने खुदावन के सामने जो अपनी जगह को पाया है, जो उसके सामने उसके फजल को पाया है, हम उसके सामने उसके उसके नियम में रखे गए हैं कि हमारे लिए हमारे पास आत्मा और जान और प्राण जो है ये सारी चीजें जो हैं और शरीर जो है ये तीनों चीजें जो हैं ये चीजें उसने हमारे लिए कायम करें और हम वैसे ही विश्वास करें जैसे खुदावंद ने हमें रखा और उसका धन्यवाद करें कि उसने क्योंकि उस इस फजल के आखिरी वक्त में उसने हमें एक बार फिर से दिखाया और उसने और जो उसने हमारे लिए किया और हम आज्ञा मानने के द्वारा अपने आप को उसके सामने उसकी हुजूरी में पेश करते हैं और हर चीज में हर शिक्षा में अपने आप को उसकी हुजूरी में उसकी खिदमत में उसके हाथ में सौंप देते हैं हलीमी के साथ और हमको खुदावंद अपने कलाम में उन सारी बातों को जो उसने रखी है वो समझाता है खुदावंद। और खुदावंद उन सारे भाइयों को जो उनको बुद्धि दे सुबुद्धि दे फजल दे जो कि सेविकाई करते हैं जो खिदमत का काम करते हैं कि क्योंकि उनको उनके ऊपर कोई और शिक्षा कोई और तालीम उनके ऊपर ना आ जाए और उनके बीच में एक संतुलन रहे एक बैलेंस रहे कि उनको पता रहे कि क्या कैसे पेश करना है क्या कैसे देना है। और मेनली जो है खास तौर पर खुदावन की जो आज्ञा है उसका जो प्लान है उसकी जो योजना है और वो जो आत्मिक भोजन है इस समय का वो प्रभु के लोगों को दिया जाए। आप सब आशीषित हों, आप प्रभु खुदावन के नाम में आशीषित हों। खुदावन के प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम मांगते हैं आमीन। और अब हम दुआ के लिए खड़े होते हैं। भाई बोक हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिलों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन के तेरे इस पाक कलाम के लिए खास कलाम के लिए जो हमने सुना। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने नबी को हमारे लिए भेजा और उसकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और हम इस बात के लिए भी और भाई फ्रैंक की सेविकाई के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा होने दिया कि वो जो खुराक है और खुदावन का जो मुकाशफे वाला कलाम है उसको पाक कलाम के अंदर वैसे ढूंढा जाए और वैसे बिठाया जाए और वैसे समझा जाए जैसा अभी हमने सुना। और खुदावंद उसके लिए हम तुझे महिमा देते हैं, अपने 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 लोगों को सारी दुनिया के अंदर खुदावंद जो तेरी बातों को सुनते हैं खुदावंद, उनको जो खुदावंद जो इन्होंने इस मैसेज को सुनते हैं खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन।
Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.